अध्याय 6 दास प्रथा भूमिका। विश्व समाज में मानव जैसे जैसे सभ्य समुन्नत होता गया, उनकी विकृतियां भी उसी के अनुपात में बढ़ती गई। ऐसी ही एवं सामाजिक कृति विकृति दास प्रथा की है। विश्व की सभी प्राचीन संस्कृतियों में मानव ने जब सांस्कृतिक प्रगति की तो प्रगति के परिणाम स्वरूप भौतिक सुख एवं समृद्धि के साधनों को भी एकत्रित करने का उपक्रम किया। भौतिक उपभोग की वस्तुओं को संग्रहित करने के साथ ही उसे मानव अनुचरों एवं सहायकों की आवश्यकता पड़ी। अतः मृतक नौकर चाकर कर्मकार आदि सेवकों की सेना राजाओं सामंतों एवं श्रेणियों की सेवा के लिए खड़ी की गई, जिन्हें राजा आदि को उनके कार्य के बदले पर परिश्रमिक देना पड़ता था। कालांतर में एक ऐसे ही वर्ग का उदय हुआ जिसे भरण पोषण के लिए मात्र भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इन्हें उनके परिश्रम के बदले कुछ भी देना नहीं होता था। उनकी समाज में कोई संपत्ति नहीं होती थी, वरन वे स्वयं स्वामी की संपदा के एक अंग होते थे। बेबीलोन, मिस्र, यूनान, रोम आदि देशों की प्राचीन संस्कृतियों में इन्हें गुलाम कहा जाता था, किंतु मध्ययुगीन यूरोप और अमेरिका में जिस प्रकार दास प्रथा विकसित हुई उनकी त्रासदी अकल्पनीय है। यूरोपीय व्यापारी संगठित बल के साथ अफ्रीका महाद्वीप की निग्रो प्रजातियों के बलात् पकड़कर बंदी बनाकर जहाजों में ठूस कर इस प्रकार चलते हैं कि बहुत से भूख प्यास से तड़प कर यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। शेष जीवित बंदियों को अमेरिका में किसी कर्मों पर कार्य करने के लिए देश दिया जाता था। इन पर इतना अधिक अत्याचार किया जाता था कि प्राचीन काल की बर्बर जातियां भी अपने गुलामों पर उतना अत्याचार न करती। आश्चर्य तो यह है कि ईसाई, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट चर्च भी स्वामियों द्वारा गुलाम पर किए गए अत्याचारों को वैध मानते थे। अंततः ब्रिटिश उपनिवेशों में सन 1833 ईस्वी में दास प्रथा अवैध घोषित कर दी गई। भारत में दास प्रथा। अन्य प्राचीन संस्कृतियों की भांति प्राचीन भारत में भी दास प्रथा का चलन था। भारत के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से हमें भारतीय समाज का वह स्वरूप मिलता है जिसे सामान्य तथा आर्य एवं दास प्रजातियों द्वारा व्यक्त किया गया है। संभवतः ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाओं में वर्णित दास आर्यों की दास गुलाम नहीं वरन उनके प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि उन्हें शत्रु रूप में प्रस्तुत किया गया है। आर्य कृतवान, व्रतवान, गौरवण, उन्नत नासिका युक्त कहे गए हैं, तो दास अक्रतु, आव्रत, कृष्णवर्ण, वृद्धवाच, चिविड़, नाश कहे गए हैं। स्पष्ट है कि यह विवरण दो प्रतिस्पर्धी प्रजातियों का है। आर्य देवताओं इंद्र, सूर्य आदि से प्रार्थना की गई है कि दासों को धरती पर लिटाकर उन्हें उपाधान कोष्ठक में तकिया बना दिया जाए। उनके 90 नगरों को अग्नि एवं इंद्र ने ध्वस्त कर दिया। 10 राज्य युग के संदर्भ में वर्णन है। इंद्र एवं वरुण ने दास शत्रुओं का वध कर राजा सुदास की रक्षा की इत्यादि। इन विवरणों से स्पष्ट है कि आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया तो कृष्णवर्ण की किसी प्रजाति ने उनका विरोध किया। अपनी सांस्कृतिक एवं शारीरिक श्रेष्ठता के कारण आर्यों ने उन्हें घृणा पूर्वक दास कहा, किंतु प्रारंभ में वे गुलाम नहीं थे। का वैदिक युग में दास प्रथा। आर्य अनार संघर्ष में आर्यों की पूर्ण विजय हुई। अनार के विशाल कायपुर एवं दुर्ग सैकड़ों की संख्या में ध्वस्त कर दिए गए। संभवतः अनेक अनार दास युद्ध में बंदी भी बनाए गए। इन बंदी दासों को ही संभवतः गुलामों की भांति दान में दिया जाने का उल्लेख है। ऋग्वेद से ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें गोदान के साथ ही दास एवं मेष दान का भी प्रसंग है। दान में 100 दासों के दान का उल्लेख सिद्ध करता है कि संभवतः दास के पास दासों की एक लंबी सेना रही होगी। एक अन्य प्रसंग में पुरुतकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु द्वारा 50 युवा स्त्रियों के दान का उल्लेख है। अनुमान है कि ये स्त्रियां भी दासी रही होंगी। तैतरीय संहिता में दासियों को जलपूर्ण कुंभ सिर पर रखकर मधुर स्वर में गाते तथा गीत की धुन पर पैर से धरती पर थाप देकर मार्जालीय के चतुर्दिक नाचते अंकित किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक राजा द्वारा 1000 दासियों के दान का उल्लेख है। अतः कहा जा सकता है कि पराजित एवं बंदी अनारियों को आर्य विजेताओं ने दास बना लिया। उनके पास इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे सैकड़ों व हजारों की संख्या में दास दिए जा सकते थे। चूंकि पुरुष दासों की तुलना में स्त्री दासियों की आर्थिक उपयोगिता कम थी, यही कारण है कि दान में दी गई दासियों की संख्या कई बार 1000 तक पहुंच गई है, परंतु दासों की संख्या 100 में ही रही। दूसरे ओर हमें ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जिनमें वर्णन है कि दासों की संख्या संपदा के अन्य अवयवों की भांति सामाजिक मर्यादा की धोतक थी। योग उपनिषद में वर्णन है कि इस संसार में गो, अश्व, हस्ती, हिरण्य, दास, भार्या, क्षेत्र एवं भान भवनाधिक महिमा सूचक है। अतः कहा जा सकता है कि वैदिक युग में दास रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बन चुका था। दास दासियों दोनों की ही प्रथा थी। संभवतः दास दासियों का कोई अधिकार नहीं होता था। उन्हें पशु, स्वर्ण, प्रवृत्ति, संपत्ति का अंग समझा जाता था एवं इन वस्तुओं के समान ही उन्हें दान में दिया एवं लिया जाता था। किंतु प्राप्त वैदिक प्रसंगों से उनके रहन सहन, स्वामी दास संबंध आदि पर प्रकाश नहीं पड़ता, न ही कोई प्रमाण दास विक्रय की ओर संकेत करते हैं। किंतु दान में प्राप्त सहस्त्र दासियों के भरण पोषण की व्यवस्था करने व्यक्ति निश्चित ही इनका विक्रय करते रहे होंगे। खा, सूत्र युग में दासों की दशा। यह सूत्रों एवं धर्म सूत्रों में वर्णन है कि दास अतिथियों का पद प्रच्छालन किया करते थे। स्मरणीय है कि सूत्र काल में शूद्रों को भी सेवा कार्य का निर्देश था, किंतु शूद्र एवं दास समान नहीं थे। शूद्र का व्यक्तित्व स्वतंत्र था, वह अनिच्छा होने पर ब्राह्मण का अन्य द्विज वर्णों की सेवा करने कार्य से इनकार कर सकता था। जैसा कि जैमिनि ने स्पष्ट किया है कि विश्वजीत यज्ञ के अवसर पर दान करते समय यजमान शूद्र का दान नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा उसका धर्म है, व्याधता या दासता नहीं। सबर ने भाष्य करते हुए कहा है कि शूद्र अनिच्छा होने पर उस व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकता जिस व्यक्ति को यजमान ने सर्वदान दिया है। तात्पर्य है कि दास को ऐसी स्थिति में सेवा करनी ही पड़ेगी, यह उनकी बाध्यता है जो उसकी दासता से जुड़ी हुई है। किंतु सेवा शूद्र का धर्म एवं कर्म है, उसके बदले उसे परिश्रमिक मिलता है। अतः वह सेवा करके या ना करके अपनी पराश्रमिक का ही लाभ या हानि करेगा, उसकी स्थिति दास जैसी नहीं है। धर्म सूत्रों से हमें दासों के रहन सहन की भी सूचना मिलती है। अपस्तंभ धर्म सूत्र में निर्देश है कि किसी अतिथि के आगमन के समय गृह स्वामी अपने पुत्र, पत्नी या स्वयं को भोजन से रोक सकता है, किंतु दास एवं कर्मकारों का भोजन उसे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वे परिश्रम करते हैं। मनु ने शारीरिक दंड के प्रसंग में भार्या, पुत्र, दास एवं कर्मकार को समान बतलाया है तथा सुझाव दिया है कि इन्हें रज्जु तथा बांस के पतले टुकड़े से केवल पीठ पर दंडित करना चाहिए, कभी भी सिर पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्वामी इसके विपरीत आचरण करे तो उसे एक चोर की सजा दी जानी चाहिए। नंबर का बौद्ध साहित्य से ज्ञात दास प्रथा। ब्राह्मण, श्रुति, सूत्र एवं स्मृति आदि धर्म वचनों को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहासकार आदर्श लोक की कामना मान लेते हैं। उनका आक्षेप है कि ये ग्रंथ आदर्श स्थापित करते हैं, इनसे तत्कालीन यथार्थ व्यवहार की सूचना नहीं मिल पाती। किंतु बौद्ध साहित्य में जो विवरण उपलब्ध है वे जीवन के यथार्थ के अधिक निकट हैं। बौद्ध साहित्य में ऐसे दासों का उल्लेख मिलता है जो स्वामी के घर में ही सर्वदा निवास करते हैं, या स्वामी के साथ या अकेले कार्य से घर के बाहर भी भेजे जाते थे। इनका जीवन कष्टप्रद था, इनके साथ दुर्व्यवहार के भी कतिपय उदाहरण मिलते हैं। दास दासियों की पिटाई इस समय सामान्य बात थी। थेरी गाथा में एक ऐसी दासी पुष्पिका का प्रसंग है जिसे उसकी स्वामिनी ने दंडित करने के लिए जाड़े की ठंड शीत में पानी में उतरने को विवश किया। श्रावस्ती की वैदेहिका ने अपनी दासी काली को खूब पीटा था। नाम सिद्धि जातक में एक दासी को रज्जु से प्रताड़ित करने का उल्लेख है जो मनु के दासों की रस्सी से दंडित करने के सुझाव के अनुरूप है। अट्ट कथा में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्वामिनियों के दुर्व्यवहार से दुखी दासियों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। बौद्ध साहित्य में ऐसे यज्ञों के भी उल्लेख है जो यजमान पुण्य वृद्धि के लिए तो आयोजित करते थे, पर उनमें कार्यभार, दुख एवं पीड़ा से कलपते आंसू बहाते दासों एवं दासियों की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। संयुक्त निकाय के यज्ञ सूत्र तथा दीघ निकाय के कूट दंत सूत्र में ऐसे तीन दुखी दासों की ओर तथागत का आकर्षित होना चित्रित है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि दास दासी वंशानुगत हुआ करते थे। जातक कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें दास दासियों की संतानें भी दास दासियां हुई है। खंडहाल जातक से ज्ञात होता है कि डर के कारण भी दास जीवन व्यतीत करने लगते थे। युद्ध में बनाए गए बंदियों को भी दास बना लिया जाता था। कभी कभी किसी बड़े अपराध के दंड स्वरूप भी दास बना लिया जाता था। कुलावक जातक से एक ऐसे ही दास की सूचना मिलती है जो दंड स्वरूप दास बना था। बौद्ध साहित्य में भी दासों दासियों के दान भेंट या उपहार के रूप में दिए जाने के प्रसंग हैं। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि वैद्य जीवन ने साकेत के सृष्टि की पत्नी के पुराने सिरदर्द की दवा के बदले में उसे एक दास एवं स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। राजा सृष्टि सामंत एवं ब्राह्मण तो दास दासियां रखते ही थे। सामान्य गृहस्थों के यहाँ भी दास दासियों के होने के प्रमाण बौद्ध साहित्य से मिलते हैं। वैदिक साहित्य की ही भांति बौद्ध साहित्य से भी ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जिनमें एक स्वामी के पास 500 या 1000 दासियों तक के होने का प्रसंग है। वर्णन है कि वत्स राज उदयन के पास रंग महल में 500 दासियां थी। विशाखा अपने साथ पिता के घर से 500 दासियां लाई थी। पिपली माणवक के पास दासों के 14 गांव थे, किंतु ये उदाहरण अत्यंत दुर्लभ है तथा ऐसे उदाहरण केवल बड़े राजघरानों तथा सृष्टियों के यहाँ से ही पाए गए हैं। फिर भी जन सामान्य परिवारों में एक या दो दासों दास दासी ही हुआ करते थे। दासता मुक्ति। बौद्ध साहित्य में दासता मुक्ति के भी उदाहरण मिलते हैं। स्वामियों स्वामिनियों के अत्याचारों से संतरस्त दास दासियों को भागकर दासता से मुक्ति पाने के कतिपय उदाहरण मिलते हैं, किंतु कुछ ऐसी विशेष अवस्थाओं का भी वर्णन है जिसमें दास मुक्ति संभव थी। कुछ मूल्य चुकाने, स्वामियों के प्रसन्न होने या विशेष उत्सवों या अवसरों के उपलक्ष्य में दास दासियों को दासता के बंधन से मुक्त कर दिया जाता था। संभवतः भगवान बुद्ध के समतावादी या लोकतांत्रिक मूल्यों के धर्म प्रचार के कारण भी दासता मुक्ति को प्रोत्साहन मिला होगा। अपने धर्म प्रचार में भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करना सबका अधिकार घोषित किया, दास प्रथा को अनुचित कहा, दास दासी दान का प्रतिग्रहण निंदनीय कहा, जिसका समाज पर अवश्य ही प्रभाव पड़ा होगा। संभवतः भगवान बुद्ध के ही प्रभाव में अनाथ पिंडक ने अपनी दासी पुष्णिका को मुक्त कर दिया। दासता से मुक्ति पाकर ही खुज्जू तरादासी से राजमाता बन गई। दासता मुक्ति के लिए संभवतः विशेष कृत किया जाता था। पिपली माणवक ने अपने दासों से कहा था कि अब तुम अपने सिरों को आप धोकर मुक्त हो जाओ। इससे अनुमान किया जा सकता है कि दासता मुक्ति के लिए एक विशेष प्रकार का स्नान कराया जाता था। दासता मुक्ति ऋण एवं रोग से मुक्ति होने के समान माना जाता था। दासता मुक्ति ऋण एवं रोग से मुक्त होने के समान माना जाता था। कहीं कहीं दासता मुक्ति की तुलना कारागार मुक्ति से ही की गई है, जो अति उपयुक्त है। बौद्ध साहित्य में कहीं कहीं तो दासता मुक्ति की तुलना निर्वाण से की गई है। सचमुच दास का दासता बंधन टूटना उसकी निर्वाण प्राप्ति के ही समान माना जा सकता है। था मौर्य युग में दास प्रथा। गौतम बुद्ध के प्रयास से संभवतः उनके बाद देश में दासता की प्रथा में कमी आ गई थी। गृहस्थों व स्वामियों के व्यवहार भी दास दासियों के प्रति उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण हो गए थे। यही कारण था कि यूनानी दासता की भयंकरता से परिचित मेगस्थनीज को भारत में दासता अज्ञात लगी। भारतीय परिवारों में रहने वाले दासों के प्रति गृह स्वामियों के व्यवहार इतने अच्छे थे कि उसे दास दास लगते ही नहीं थे। इसी कारण संभवतः उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रखते थे, किंतु मौर्य युग में दास प्रथा की पुष्टि अशोक के शिलालेख के दास भक्त कम्भी संपत्तिपति उद्धरण से होती है। इस उद्धरण से अशोक दासों व भृतकों के प्रति अच्छे व्यवहार का आदेश प्रसारित करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय एवं निर्देश दिए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार आर्य पुत्रों को दास नहीं बनाया जा सकता, किंतु आपद काल में आर्य भी दास स्वरूप किए दिए जा सकते हैं। अर्थशास्त्र में दासों के कई प्रकार कहे गए हैं, उनमें प्रमुख निम्न है। नंबर 1 ध्वज हित दास। वे हैं जिन्हें युद्ध बंदी के रूप में पकड़ा गया हो। नंबर दो, आत्म विक्रयी दास, वे हैं जो स्वतः अपने को पैसे के बदले बेचकर दासता ग्रहण करते हैं। नंबर तीन, उदार दास या गर्भ दास, उदार दास या गर्भ दास वे दास होते हैं जो दास दासी पिता माता से उत्पन्न हुए हो। नंबर चार, आहितिक, आहितिक वे दास हैं जो ऋण शोधन के लिए दासता स्वीकार करते हो। नंबर पाँच, दंड प्रणीत, दंड प्रणीत वे दास होते हैं जो किसी अर्थदंड न्यायालय के आदेश आदि के द्वारा दास हुए हों। दासता मुक्ति, अर्थशास्त्र में दासता मुक्ति के भी कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसकी तुलना बौद्ध साहित्य में वर्णित दासता मुक्ति से करने पर ज्ञात होता है। कौटिल्य की दासता मुक्ति विधियाँ अधिक व्यापक एवं वैज्ञानिक है। इनमें देश एवं काल की रीतियों तथा नीतियों की भी झलक मिलती है। इसमें न केवल दासों वरन स्वामियों के कर्तव्य या कर्तव्य की भी निश्चित कर दिए गए हैं। नंबर एक, मूल्य भुगतान से दासता मुक्ति। जो दास किसी धन संपत्ति ऋण या देश राशि के बदले बंधक हो, उन्हें उस राशि के भुगतान के पश्चात दासता मुक्ति हो जाती थी। जो दास दास रूप में ही उत्पन्न हुए थे, उनका भी उचित मूल्य भुगतान करके उन्हें दासता से मुक्ति दिलाई जा सकती थी। नंबर दो, दंड पीड़ित दास यदि दंड का भुगतान ना कर सके तो भी वे दंड मूल्य के बराबर कार्य करके दंड मूल्य का भुगतान कर सकते थे। दंड मूल्य के भुगतान के पश्चात वे मुक्त हो जाते थे। नंबर तीन, ध्वजाहित दास जो युद्ध बंदी के रूप में पकड़े गए थे, उन्हें अपने मूल्य का आधा भुगतान करने या दास के रूप में बिताए गए समान समय के अनुपात के आधार पर तथा इस अवधि में किए गए कार्य के मूल्यांकन पर दासता से मुक्ति मिल जाती। नंबर चार, उस दास का खुद दासता से मुक्त समझा जाएगा जिसने स्वयं अपने को दास के रूप में बेच दिया हो। नंबर पाँच, यदि कोई स्वामी अपने बंधक दास से सौ ढुलाता, मलमूत्र उच्छिष्ट भोजन का जूठन साफ कराता, नग्न रखता, पीटता या गाली व अपशब्द कहता या दासी का सील भंग करता, तो उसका बंधक मूल्य स्वतः समाप्त हो जाता है और दास अपनी दासता से मुक्त समझे जाते हैं। नंबर छह, यदि स्वामी अपनी बंधक दासी से उसकी इच्छा के विरुद्ध मैथुन करता है तो वह प्रथम दंड का अधिकारी होता है। कौटिल्य के व्यवस्था को देखने से स्पष्ट होता है कि मौर्य युग में न केवल दास प्रथा प्रचलित थी, वरन दास प्रथा के नियंत्रण एवं निर्देश के लिए राज प्रशासन के नियम उपनियम भी निश्चित थे, जिसके कारण दास दासियों के साथ दुर्व्यवहार की संभावना कम थी। स्वामी अपने अपने दास दासियों के साथ मनमानी नहीं कर सकते थे, उनके साथ व्यवहार की आचार संहिता भी निश्चित थी। यह सत्य है कि स्वामियों की मनमानी देखने वाला कोई राज कर्मचारी नहीं होता था, लेकिन समाज में दास व्यवहार एवं आचार मानक रूप से ज्ञात थे, जिनके अतिक्रमण करने पर लोक निंदा का भय होता था। लोक निंदा के भय से स्वामी दासियों के साथ बलात्कार तो नहीं कर सकते थे, किंतु स्वामिनियों की पिटाई व प्रताड़ना की पर्याप्त संभावना रहती रही होगी। नंबर अंगा, शुंग युग में दासता। वस्तुतः शुंग युग काल में दासता सिद्ध करने का कोई ठोस आधार हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किंतु भाषा एवं व्याकरण आदि के आधार पर आज प्राप्त मनुस्मृति का संकलन शुंग काल में किया हुआ स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में मनुस्मृति में दी गई व्यवस्थाओं को शुंग कालीन स्वीकार किया जाता है। मनु ने भी दासों का वर्गीकरण किया है, उन्होंने दासों के सात प्रकार कहे हैं। नंबर आ, ध्वजाहित, युद्ध में स्वामी के पास से जीता गया, कौटिल्य भी इसका उल्लेख करते हैं। नंबर बा, भक्त दास, वे होते हैं जो भोजन आदि के लोभ में दास बने रहते हैं। नंबर सा, गृहज या दासी पुत्र, गृह कार्य करने वाली दासी से उत्पन्न पुत्र गृहज या दासी पुत्र कहा जाते हैं। नंबर दा, कृत दास, वे होते हैं जो मूल्य देकर खरीदे गए हों। नंबर पाँच, दत्त दास, किसी दूसरे द्वारा दिए हुए दास जैसे दान उपहार भेंट या पुरस्कार में प्राप्त। नंबर था, पैतृक दास, पिता की वंशानुक्रम से ही दास उत्पन्न हुए हों। नंबर चार, दंड दास, दंड अर्थ आदि के शोधन के लिए दास वृत्ति ग्रहण किए हुए। अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में दी गई दासों की वर्गीकृत सूची की एक दूसरे से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि दोनों में पर्याप्त समानता है। मनुस्मृति में दास की अधिक संख्या भी भ्रमात्मक है। वस्तुतः कौटिल्य के उदार दास या गर्भदास की श्रेणी में ही मनु के दासी पुत्र एवं पैतृक दास रखे जा सकते हैं, किंतु मनु की विशेषता इसमें है कि उन्होंने दासों की उत्पत्ति की विविध परिस्थितियों में सूक्ष्म अंतर रख करने का प्रयास किया है। मनु ने कुछ ऐसे दासों का भी सूक्ष्म निरंतरण किया है जो अकार अपनी लोभ वृत्ति के कारण दासता का जीवन जीते हैं। शायद उन्हें स्वामी जैसा सुस्वादु भोजन आदि अन्यत्र मिलने की संभावना नहीं होती। चूंकि वे अकार केवल उदर पोषण के लिए दासता करते हैं, इसलिए उनके भागने आदि का भी भय नहीं रहता। यही कारण है कि उनके भक्त दास कहा गया है। दासों की स्थिति। दासों के रहन सहन, अधिकार, कर्तव्य, दंड एवं न्याय प्रतिक्रिया आदि के विषय में भी मनु ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जहाँ तक दासों के अधिकार का प्रसंग है, मनु ने स्पष्ट किया है कि तत्कालीन समाज में भार्या, पुत्र एवं दास को संपत्ति का अधिकार नहीं था। भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रयम् एवाधना स्मृता, अर्थात मनु आदि माहिष्यों व स्मृतकारों के अनुसार इन्हें धन का अधिकार नहीं। तात्पर्य कि वे समाज में निर्धन होते हैं, ये जो कुछ उपार्जित करते हैं वह उसका होता है जिसके ये भार्या पुत्र या दास हैं। इस प्रकार दास को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। मनु ने दूसरी महत्वपूर्ण सूचना स्वामी दास संबंध के विषय में दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भार्या पुत्र दास से प्रेष्य तथा सहोदर भाई आदि भाई यदि अपराध करे तो उसे रस्सी से या बांस की पतली छड़ी से वेणु दलेन ताड़ित करे। मनु के भाष्यकार ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि यह ताड़ना शिक्षा देने के उद्देश्य से होना चाहिए। शिक्षार्थ ताड़न विधान है, केवल अपवाद स्वरूप ही दंड के लिए ताड़ना दी जानी चाहिए। आगे मनु ने और स्पष्ट करते हुए कहा है कि ताड़ना भी शरीर के कठोर भागों तथा पीठ पर आदि पर की जानी चाहिए। कोमल अंगों या उत्तम अंगों यथा सिर, आंख, कपोल आदि पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी दास के कोमल अंगों पर प्रहार करता है तो उसके वही सजा दी जानी चाहिए जो एक चोर की दी जाती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारतीय धर्मशास्त्रियों ने दासों को अपने भार्या या पुत्र जैसे प्रियजनों की कोटि में रखा है जो उनकी मानवीय दृष्टिकोण का द्योतक है, जबकि अन्य संस्कृतियों में दासों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। मनोरंजन एवं क्रीड़ा में उनका वध कर देना या उन्हें अपने पालतू व्याघ्रों के सम्मुख फेंकवा देना या दो दासों को पशुओं के समान द्वंद में लड़ाकर आनंद लेना सामान्य बात थी, किंतु भारत में स्वामी की एक आचार संहिता थी जिसकी अतिक्रमण स्वामी सामान्यतः नहीं करते थे। नंबर 4, गुप्त युग में दास प्रथा। गुप्तों के सुसंगठित शासन में देश धन धान्य संपन्न हुआ। धन संपन्न होने के कारण समाज में सुख एवं समृद्धि के साधन भी विकसित हुए। यह एक सर्व सामान्य सत्य है कि प्राचीन संस्कृतियों में संपन्नता के साथ साथ दास, नौकर, चाकर, कर्मकार आदि भी जीवन के अनिवार्य अंग हो जाया करते थे। अतः भारतीय इतिहास का यह स्वर्ण काल भी इसका अपवाद ना हो सका। गुप्त युगीन साहित्य से इसकी पुष्टि होती है। इस युग में दास प्रथा पर व्यवस्थित साहित्य की रचना हुई। उनके रहन सहन, जीवन पद्धति, विविध प्रकार एवं सबकी व्यापक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। उदाहरण स्वरूप नारद एवं कात्यायन ने दास प्रथा का व्यापक विवेचन किया। नारद ने सर्वप्रथम इस प्रकार के कर्मकारों का वर्गीकरण किया। उनके अनुसार शुश्रूषक 5 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचारी, अंतेवासी, अधिकर्म, कृतधीतक एवं दास। इनमें प्रथम 4 कर्म पर कहे जाते हैं, उनसे केवल सूची कर्म ही कराए जा सकते हैं, जबकि दास से अशुभ कर्म भी संपन्न कराए जा सकते हैं। इस प्रकार इस व्याख्या से स्पष्ट है कि कर्म एवं दास वृत्ति स्पष्ट विभाजक रेखा उनकी कर्म की प्रकृति है। कर्म कार वे हैं जो शुभ कर्मों का ही संपादन करते हैं, तथा दास वे हैं जो अशुभ कर्म भी संपन्न करते हैं। अशुभम कर्म विधेयम। दासों के प्रकार। अन्य धर्म शास्त्रियों की भांति नारद, कात्यायन आदि ने भी दासों का वर्गीकरण किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दास प्रथा प्रारंभ हुई तो दासों के प्रकार कम थे, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया सामाजिक संगठनों में संश्लिष्टता आती गई, समाज की आवश्यकताएं बढ़ी एवं आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें पूर्ण करने वाले नौकर चाकर भी खोजे जाने लगे। धर्म शास्त्रियों ने इन विविध प्रकार के कर्मकार एवं दासों का भी सूक्ष्म अध्ययन किया एवं उनका वर्गीकरण किया। समय की वृद्धि के साथ दास के प्रकार भी बढ़ते गए। उदाहरण स्वरूप वैदिक समाज में दासों के प्रकार कम थे, बौद्ध युग की समाज में संख्या कुछ बढ़ी होगी। मौर्य युग में इनके 5 प्रकार कहे गए, मनु ने इन्हें 7 कोटियों में विभक्त किया और नारद ने हमें 15 प्रकार के दासों, वे हैं गृहज, कृत, दत्त, पैतृक, दुर्भिक्ष काल में बचाया हुआ, स्वामी द्वारा बंधक के रूप में दिया हुआ, ऋण से मुक्त किया हुआ, ध्वजहित धूत में हारा हुआ, स्वयं दत्त संन्यास, किसी निश्चित अवधि के लिए दास वृत्ति ग्रहण करने वाला, भक्त दास या भोजन दास, दासी प्रेम में फंसा दास, जो अपने को स्वयं दास के रूप में विक्रय कर दे। इस सूची को देखने से तत्कालीन समाज में व्याप्त दासों की प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि भारत में दासता उतनी भयावह नहीं थी जितनी विदेशों में। यदि दासता भयावह न होती तो विविध कारणों से लोग दास वृत्ति न ग्रहण करते। उदाहरण स्वरूप स्वयं दत्त दास तो कम से कम कोई भी होना नहीं चाहता, किंतु ऐसा लगता है कि अन्य वृत्तियों के समान ही भारत में दासता भी एक वृत्ति थी जिसे लोग परिस्थिति विशेष में ग्रहण कर लेते थे, तथा परिस्थिति संतोषजनक दासता मुक्ति जनित उपबंधों को पूरा करने के पश्चात दासता के बंधन से मुक्त हो जाते थे। दासों के कार्य। ऐसा प्रतीत होता है कि समय की प्रगति के साथ दासों की स्थिति में गिरावट आती जा रही थी। कौटिल ने उन स्वामियों की भर्त्सना की है जो अपने दासों से मल मूत्र साफ कराते या शव ले जाने को विवश करते थे, किंतु नारद ने अशुभ कर्म का संपादन ही दासों का प्रमुख कर्म निर्धारित किया है। उनके अनुसार दास को गृह द्वार, असुचि स्थान, रथ्या, कोष्ठक में रास्ता, गोबर आदि को साफ करना, स्वामी के गुप्तांगों का स्पर्श करना, मल मूत्र ग्रहण करना एवं फेंकना एवं इच्छा होने पर स्वामी की अंगों की सेवा करना पड़ता था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि स्वामी के इच्छा होने पर स्वस्थ सुंदरी युवती दासियों से गुप्त अंगों का स्पर्श कराकर कालांतर में उससे मैथुन की धृष्टता भी कर सकता था। इस प्रकार दासी के शरीर का उपभोग भी उसके अधिकार के अंतर आता गया। ऐसी अवस्था में दासियों के गर्भवती होने की भी संभावना थी। यही कारण है कि इस युग के धर्म शास्त्रियों ने गृहज एवं दासपुत्र जैसे दासों का एक अलग प्रकार ही मान लिया था जो ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो रहे थे। दासों का अधिकार। नारद एवं याज्ञवल्क्य ने सभी प्रकार के दासों के लिए एक सामान्य नियम बना दिया है कि यदि दास स्वामी की किसी विपत्ति से प्राण रक्षा करता है तो वह अपने इस कार्य के कारण दासता से स्वतः मुक्त हो जाता है। ऐसे दास के लिए नारद ने स्वामी की संपत्ति में पुत्र के समान दाय भाग कोष्ठक में हिस्सा किया, किंतु कौटिल ने उसका उत्तराधिकारी उसके संबंधियों को घोषित किया है। संबंधियों के अभाव में स्वामी ही दास का उत्तराधिकारी होता है। कात्यायन के अनुसार दास की संपत्ति मात्र वह मूल्य है जो वह स्वयं को बेच कर प्राप्त करता है या जो कुछ स्वामी प्रसन्न होकर उसे भेंट या दान स्वरूप देता है। नारद एवं कात्यायन ने स्पष्ट किया है कि दास अपने स्वामी के परिवार के लाभ के लिए ऋण भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे ऋण का शोधन या भुगतान स्वामी को करना होगा। सामान्यतः दासों के प्रमाण व्यवहार व दंड प्रक्रिया के मान्य नहीं होते थे, किंतु व्यवहार मयुग में मनु एवं उस नसु को उद्धित करते हुए कहा गया है कि जब अन्य प्रमाण उपलब्ध ना हो तो दास भी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। दासता मुक्ति। इस युग में दासों के जितने अधिक प्रकार बतलाए गए हैं, दासता मुक्ति के विभिन्न साधन भी उसी अनुपात में निर्धारित किए गए हैं। नारद के अनुसार गृहज या दासी पुत्र, कृत, दत्त एवं पैतृक प्रकार के दास केवल स्वामी की कृपा से ही मुक्त हो सकते थे। अन्यथा उनकी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं था। स्वयं अपने को बेचने वाला भी अधम कोटि का होता है, उसे भी मुक्ति नहीं मिल पाती। पथ भ्रष्ट सन्यासी जीवन पर्यंत दास वृत्ति में ही रखेगा। दुर्भिक्ष या अकाल में बचाया हुआ दास गोमुझी प्रदान कर मुक्त हो जाता था। बंधक दास जब मुक्त होता है, जब बंधक रखने वाला स्वामी ऋण का शोध कर देता है, ऋण दास ऋण शोध के बाद मुक्त हो जाता है। ध्वजाभित दूत दास या स्वयं दत्त दास अपने बदले में दूसरे को देकर दासता से मुक्त हो सकता है। अवधि दास उस अवधि के पूरा हो जाने पर स्वतः मुक्त हो जाता है। भक्त दास तब तक मुक्त होता है जब स्वामी उसको भोजन देना बंद कर दे। पड़वा हित या दासी प्रेम में फंसा दास उस दासी से मैथुन प्रत्याग कर मुक्त हो सकता है। बलात् दास राजा द्वारा मुक्त किया जा सकता है। दासता विधि या विकल्प एवं नारद ने स्पष्ट किया है कि दासता सामान्य तथा वर्ण अनुलोम क्रम में ही होनी चाहिए, प्रतिलोम क्रम में नहीं। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र को क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र को वैश्य शूद्र को दास रख सकता है, किंतु शूद्र वैश्य को वैश्य क्षत्रिय को और क्षत्रिय ब्राह्मण को दास नहीं रख सकता। किंतु एक अपवाद बतलाया गया है, वह यह है कि प्रतिभ्रष्ट वानप्रस्थ या सन्यासी वैश्य या शूद्र का भी दास हो सकता है। कात्यायन ने स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बनाया जा सकता। एक ब्राह्मण को दूसरा ब्राह्मण भी दास नहीं बनता। किंतु यदि ब्राह्मण स्वतः दास कर्म करना चाहता है तो उसे श्रुति तिलवान ब्राह्मण का शुभ कर्म ही करना चाहिए, अशुभ कर्मों के पास भी नहीं जाना चाहिए। सभी धर्मशास्त्रियों ने दासों के प्रति अच्छे व्यवहार का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में दासियों के साथ बलात्कार एवं शारीरिक शोषण की अधिक संभावनाएं थी। अतः कौटिल्य एवं कात्यायन ने स्पष्ट किया है कि यदि स्वामी ने दासु से मैथुन किया, परिणाम स्वरूप उसे गर्भ हुआ, तो इस प्रकार उत्पन्न संतान दासी समेत मुक्त हो जाएगी। अतः दासी से हाथ धोने के भय के कारण स्वामी जन दासियों के शारीरिक शोषण से दूर रहते रहे होंगे, किंतु व्यवहार में इन निर्देशों का कितना आचरण हो पाता था इसे तय कर पाने की स्थिति में आज हम नहीं हैं। दासता मुक्ति विधान। बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि अब तुम अपना सिर धोकर आप मुक्त हो जाओ। इससे अनुमान किया जाता है कि दासता मुक्ति के लिए विशेष स्नान की व्यवस्था थी। नारद ने भी एक ऐसे आयोजन का वर्णन किया है कि जब स्वामी किसी दास से उत्पन्न हो उसे मुक्त करना चाहता है तो दास के कंधे से जलपुर कुंभ उतार कर फोड़ देता है। दास के शरीर पर जल अक्षत अन्न पुष्प आदि छिड़कते हुए तुम अब दास नहीं हो तीन बार कहता है और उसे पूर्वाभिमुख करके विदा कर देता है। इस प्रकार वह दासता से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में दासता थी अवश्य, पर दासों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होते थे। उन्हें परिवार के सदस्यों के समान माना जाता था, साथ ही दासता से उनकी मुक्ति भी संभव थी।